तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु के क्या गुरु के बिना काम नहीं चलेगा क्या। हाँ, सो और गुरु बनाना है तो कहाँ से बनाएं, कैसे पता चलेगा कौन गुरु है, किसको धारण करें, या हमारा पहले से गुरु है तो क्या करें। थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ। सो आप लोगों के ये हैं प्रश्न के नहीं है, या मतलब और लोगों के होंगे आपके नहीं है, हैं किस किस में से? अच्छा, और किसके हैं, हाथ खड़ा करो। कौन लोग ये सोचते हैं? कोई नहीं सोचता। अच्छा, आप लोग नहीं सोचते गुरु के बारे में? आप भी नहीं सोचते? हाथ में दर्द है। आप सोचते हो गुरु के बारे में? कौन कौन सोचता है गुरु बनाना चाहिए, कैसे बनाएं? कितने लोग सोचते हैं? आप लोग भी नहीं सोच रहे? अच्छा, आप नहीं सोचते गुरु के बारे में? अब हर एक से पूछे, आप नहीं सोचते? अच्छा, ओके। अगर कोई पूछे कि हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा कि हमें गुरु को धारण करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों महत्वपूर्ण कार्य है? क्योंकि हम बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो हम करोड़ों जन्मों से करते ही आ रहे हैं। हाँ, हमने ये करोड़ों जन्म यही काम किया, आहार निद्रा भय मैथुन छा, चार काम किए। आप अपने जीवन के सारे काम उठा के देख लो, चार वर्गों में आप डाल सकते हो, चार खानों में आप डाल सकते हो, जितने भी काम आपने आज तक किए हैं। अगर कन्फ्यूजन होगी तो मैं आपको बता दूंगा किस खाने में जाएंगे वो काम। आहार खाना पीना, निद्रा सोने में, भय अपने रक्षा करने में, हाँ, और मैथुनम चा बच्चे पैदा करने में। आप कोई भी काम सोच लो, इन चार खानों में आप उसको डाल सकते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य, जितने सृष्टि में जीव जंतु हैं सारे यही चार कार्य कर रहे हैं, है ना? आहार निद्रा भय मैथुनम चल, हाँ, एतत् सामान्यम् पशु भी नराणाम्। ये काम पशु भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क है कि क्या आपने गुरु बनाया, ये फर्क है। अगर गुरु नहीं बनाया तो पशु और आप में कुछ फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है हमें बताएगा कि इन चार कार्यों के अलावा एक और काम भी है, और उस काम को करने से आप जो शारीरिक और मानसिक कष्ट लगातार भोग रहे हो उससे आप बच सकते हो, बाहर निकल सकते हो। हाँ, तो वो आप बच्चे को लेके बाहर बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, आराम से बाहर बैठ जाओ। सो इन कष्टों से, जैसे शिव जी का त्रिशूल है ना, तीन कांटे हैं उसके अंदर, कोई नहीं, तीन कांटे हैं, हाँ, उसी तरह से तीन तरह के क्लेश हैं जो कि हमें बार बार, हमें लगातार हमें दुख दे रहे हैं, है ना? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। हाँ, जो प्रकृति से कष्ट मिल रहे हैं, कभी तेज बारिश आ गई, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा अनेक अलग अलग जगहों पे बाढ़ आई है ना। सो फिर हमारा जो शरीर है, शरीर में हमारे अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, नहीं बुढ़ापे में तो विशेषकर। आप किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो कि और क्या हाल है, बस एक घंटा वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ से दर्द उठता है, फिर कहाँ जाता है वो दर्द, और उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। और हाँ क्या चीज, तो एक बहुत बड़ा लेखक था खुशवंत सिंह, आपने किसी ने सुना नाम उसका? हाँ खुशवंत सिंह सुबह 4 बजे उठ के लिखना शुरू कर देता था और बिल्कुल अनसन, क्योंकि लोग पढ़ते थे उसके लेखों को। तो मैंने उसका लेख पढ़ा, तो एक लेख में उसने बताया कि उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। तो उसने लेख में लिखा कि मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि मेरा पेट साफ हो जाए सुबह। ये उसकी चिंता थी। मैं सुबह उठ के ठंडा पानी पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, टहलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो ये खाता हूँ, ये सब बोल करता हूँ कि मेरा पेट साफ हो जाए। क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भूख नहीं लगेगी। आप मतलब अगर मल पेट में जम जाए तो हालत खराब कर देता है। इतना दर्द होता है और पूरी बेचैनी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। तो कह रहा है मैं पूरा मेरा ध्यान इसी में चला जाता है कि मेरा किसी तरह से पेट साफ हो जाए। तो शारीरिक कष्ट है। फिर हमारा मन हमें कष्ट देता है। आपके मन ने कभी कष्ट दिया आपको? है कोई भी बुरा विचार दिमाग में आएगा तो मतलब मन आपको डंडे से पीट रहा है। आपके पड़ोसियों ने, आपकी सास ने या आपकी बहू ने आपको इतना कष्ट नहीं दिया होगा जितना आपके मन ने आपको कष्ट दिया है। है सही है कि नहीं है? हाँ। कोई स्थिति आपके पक्ष में है या नहीं है वो कौन बता रहा है आपको? मन तो बता रहा है यार बड़ी मुश्किल स्थिति में हो, कैसे बाहर निकलोगे? अरे सोचने से थोड़ा ना निकल जाएंगे कि हम मुश्किल स्थिति में हैं। तो मन आध्यात्मिक, मन हमें अनेक प्रकार के कष्ट देता है। फिर देवी देवता कष्ट देते हैं। जैसे इंद्र है, इंद्र गुस्से में आ गया तो बारिश की ढेर सारी, सारे ब्रजवासी परेशान हो गए, नहीं? उसे कभी सूर्य देवता को गुस्सा आ जाए तो बहुत तेजी से गर्मी बरसाते हैं। मई जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, नहीं बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे कष्ट हमें लगातार मिल रहे हैं, इसीलिए ये सारे कष्ट मिलके इतनी ताप उत्पन्न कर देते हैं, इतनी गर्मी उत्पन्न कर देते हैं जैसे जंगल की आग होती है। इतना व्यक्ति परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, सोचता है यार कुछ जीवन में कुछ आशा ही नहीं है, कैसे जीवन कटेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे, है ना, कैसे जीवन से बाहर निकलेंगे। इतना मानसिक संताप व्यक्ति के दिमाग में रहता है। तो इसकी तुलना की गई है जंगल की आग से। तो जंगल की आग जो है जब लगती है तो उसको कोई नहीं बुझा सकता। बुझा सकता है कोई? आप पूरा शहर बाल्टियां भर के ले आए, फायर ब्रिगेड आ जाए, जंगल की आग को बुझा सकते हैं क्या? हाँ। तो क्या बोलते हैं जब जंगल में आग लगती है? लोग कहते हैं भागो यहाँ से, फटाफट हट जाओ, नहीं तो जो है ये आग की गर्मी से, धुएं से, या ये आग बढ़ते बढ़ते आपके घर पे भी आ गई तो आप मर सकते हो, नुकसान हो सकता है, तो भागो यहाँ से। नहीं, ऐसे ही बोलते हैं ना। उस आग को बुझाने का कोई उपाय नहीं है, उस आग को सिर्फ एक ही उपाय है उस आग को बुझाने के लिए, वो क्या है? बारिश हो जाए। अगर नहीं, अगर बारिश हो गई ऊपर से, एकदम पूरी आग को बुझा सकती है ना। तो इसी तरह जो ये पूरा जंगल की आग की तरह जो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, उससे गुरु की कृपा रूपी वर्षा ही हमें बचा सकती है, हमें और कुछ उपाय नहीं है, है ना। अगर हम सोचें कि हम अपने आप निपट लेंगे, अपने आप समझ लेंगे, कुछ समझ नहीं सकते। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में गया था तो अर्जुन ने बोला कि उभयोर सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित कर दो, हे कृष्णा दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके जाओ। क्यों? क्योंकि मैं, जो मेरे पक्ष में लड़ रहे हैं और जो मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं, मैं दोनों को देख लूं। तो जब देखा तो दोनों तरफ अपने मित्र बंधु बांधव इत्यादि हैं, है ना। तो बहुत परेशान हो गया, और परेशानी में उस समय तक अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र समझ रहा था, है ना। तो अर्जुन ने कहा, देखो बिल्कुल गलत है, लड़ाई लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हम लड़ेंगे तो लड़ने से क्या होगा, उस तरफ के योद्धा भी मारे जाएंगे और इस तरफ के योद्धा भी मारे जाएंगे, नहीं। सो किसी भी समाज में उसको व्यवस्था बनाने का कार्य क्षत्रियों का होता है। सारे क्षत्रिय वहां पे इकट्ठे हुए थे महाभारत के युद्ध में, ना। जिसको तलवार चलाना आता है, चलो भैया पहुंच जाओ वहां पर, नहीं। सो अर्जुन ने कहा, ये सारे अगर मारे जाएंगे तो वर्ण संकर जनसंख्या, जो बच्चे पैदा होंगे, वर्ण संकर का मतलब है ऐसे बच्चे जिन्हें धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, हाँ, उनका कोई भी संस्कार नहीं किया गया, कुछ भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल एक जानवर पैदा हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया, एक ही बराबर है। जानवर ही पैदा होकर खाने के बारे में सोचता रहेगा, वो बच्चा भी पैदा हो गया पूरी जिंदगी खाने पीने के बारे में सोचता रहेगा। सो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्णा, युद्ध नहीं करना चाहिए, वर्ण संकर बच्चे पैदा हो जाएंगे, कुछ समाज की रक्षा करने वाले नहीं बचेंगे, क्या करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे। तो ऐसा कैसे, अगर क्षत्रिय होंगे तो क्षत्रिय रक्षा कर लेंगे समाज की, वर्ण संकर बच्चे जो खराब बच्चे हैं, बुरे लोग हैं, वो पैदा नहीं होंगे, उनको सुधारेंगे वो। तो भगवान कृष्ण का नहीं सुधार पाओगे, क्यों? यद यद आचरन्ति श्रेष्ठस तद तद एवेतरोजना, जैसे श्रेष्ठ लोग व्यवहार करते हैं दूसरे सब लोग उसका पीछे चलते हैं, नहीं। जैसे मोदी है, पीछे चल रहे हैं लोग, आपके यहाँ भी जो नेता होगा सब लोग बोलेंगे देखो वो ऐसा कर रहा है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, नहीं। सो भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ लोगों ने एक स्त्री का जो है अपमान किया, सो अगर उसको सजा नहीं देंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा, करो नहीं। चलो किसी ने किया, आपने पकड़ लिया उसको, वो बोलेगा भाई उसने भी तो किया था, उसमें और मुझ में क्या फर्क है, दुशासन ने, दुर्योधन ने, उसने भी किया था, उसको तुम कुछ कहने दे, मैं गरीब हूँ मेरे पीछे पड़ गए तुम, ये कहाँ का न्याय है। तो तुम क्या उसको कुछ कह पाओगे? अर्जुन ने कहा नहीं कह पाऊंगा। सही बात है, गलत है, क्यों? अर्जुन ने और बहुत सारे उदाहरण दिए कि देखो ऐसा करना चाहिए, भिक्षा मांग के मैं गुजारा कर लूंगा। तो उसने बहुत सारे तर्क दिए भगवान कृष्ण को, लेकिन उन तर्कों से वो भगवान कृष्ण को तो संतुष्ट क्या करना था, खुद भी संतुष्ट नहीं हो पाया। फिर उसने भगवान कृष्ण को बोला, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सातवें श्लोक में उसने बोला, हाँ शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे कृष्णा मैं बहुत ही भ्रमित हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, मुझे आप प्लीज मुझे बताओ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, आप प्लीज मुझे बताओ। और क्यों बताओ? क्योंकि मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूं, मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं और मैं आपका शिष्य बनना स्वीकार करता हूं। उसके बाद जब अर्जुन ने ये भगवान कृष्ण को वचन बोले, तब भगवान कृष्ण ने उसको भगवद गीता का संदेश दिया। उससे पहले भगवान कृष्ण उसकी बात सुन रहे थे, उसको कुछ बता नहीं रहे थे उसको, है ना। तो हम लोग अर्जुन से समझदार नहीं है, पहली बात है। और दूसरा बात यह है कि जिस प्रकार अर्जुन जिन दुविधाओं का, जिन मानसिक कष्टों का अनुभव महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कर रहा था, आप सब अगर ईमानदारी से सोचेंगे, आप सब ये पाएंगे कि आप सब भी परेशान हैं, आप सब बहुत कष्टों का सामना कर रहे हैं। हम किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर या पूरे ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है जो ये कह सके कि हम कष्टों का सामना नहीं कर रहे या हमें कोई दुख नहीं है। किसी के पास पैसा है तो उसको दुख है, नहीं है तो भी दुखी है वो, दोनों तरफ दोनों तरह के लोग परेशान ही हैं, है ना। सो जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु बनाया, उसी प्रकार हमें भी भगवान कृष्ण को गुरु बनाना चाहिए। आप बोलोगे भगवान कृष्ण कहाँ हैं अभी, वहाँ तो सामने खड़े थे, अभी तो भगवान कृष्ण सामने नहीं है। भगवान कृष्ण सामने नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण की वाणी हमारे सामने है। और भगवान कृष्ण की वाणी किस में लिखी हुई है? भगवत गीता में लिखी हुई है और भागवतम में लिखी हुई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश दिए, भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी उपदेश दिए, जो भागवतम के 11वें स्कंद में है, है ना। इसी प्रकार भगवान अनेक अवतारों में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने अलग अलग भक्तों को भक्ति का उपदेश दिया है, सेवा कैसे करनी है भगवान की वो बताया है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की वाणी आप लोगों को यथारूप बताए वो गुरु है। तो आदि युग में सबसे बड़े जो गुरु हैं, जो सबसे प्रमाणिक गुरु हैं, वो शिल प्रभुपाद हैं, है ना। शिल प्रभुपाद ने भगवान की वाणी को, भगवान के संदेश को बहुत ही सरल शब्दों में हमारे सामने रखा, ताकि हम उसको अपने जीवन में उतार पाए। आप बोलोगे अभी प्रभुपाद भी नहीं है, प्रभुपाद शरीर छोड़ के जा चुके हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य हैं, जो कि प्रभुपाद ने जो उनको सिखाया, जो पढ़ाया, उनको समझाया, वो उसको यथारूप दोहरा रहे हैं। हाँ, तो जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, हमें उनकी शरण लेनी चाहिए और उनसे हमें भगवत शिक्षा का, भक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। अगर हम इस अवसर से चूक जाते हैं, अगर हम ये मौका खो देते हैं, तो पता नहीं कब दोबारा ये मौका हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन कभी मिलेगा कुछ पता नहीं है। अभी आपके पास अवसर है और आप बहुत ही भाग्यशाली हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आपको पता नहीं है कि आप भाग्यशाली हो, ये प्रॉब्लम है। मैं आपको दो व्यक्तियों के बारे में बताता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा उसमें से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन था, ठीक है। सो एक व्यक्ति था, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। सो एक दोनों ही बहुत ही गरीब थे, सेम सिचुएशन थी दोनों की, खाने के लाले थे। पूरा दिन मेहनत मशक्कत करते थे, दोनों के पास एक एक बैल था। और जितना भी मजदूरी करते थे बैल के साथ में, उतना बड़े मुश्किल से गुजारा होता था। तो एक दिन एक जो एक जो बैल बैल लेके व्यक्ति गया, तो बैल लेके जा रहा था, रास्ते में उसको एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। तो उसने वो चमकीला पत्थर उठा लिया, और वो चमकीला पत्थर उठाया, उसने कहा क्या करूं इसका। तो उसने रस्सी में गांठ मारी और अपने बैल के गले में बांध दिया। घंटे नहीं बांधते जैसे। सो उसको लेके चला वो, तो सामने से एक जोहरी आ रहा था। एक जोहरी आ रहा था, जोहरी समझते हैं ना, ज्वेलर। तो उसने देखा यार ये तो बहुत ही कीमती पत्थर है, हाँ हीरा है ये। तो उसने कहा ये कितने का बेचेगा। तो उसने कहा 10 रुपए का बेचूंगा। वो तो रस्ते में से तो उठाया था उसने, 10 रुपए का बेचूंगा। तो जोहरी ने कहा 2 रुपए दूंगा। हाँ अच्छा, 2 रुपए भी बड़ी रकम है उसके लिए। उसके दिमाग में आया नहीं बेचना, 10 रुपए में दे लेता हूं तो ले ले, नहीं तो छोड़ दे। जोहरी ने कहा आवाज मारेगा मुझे, जैसे हम लोग सब्जी खरीदते हैं ना, कितने की है पूछ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं अच्छा आओ बेंजी ले लो इतने। तो उसने जोहरी ने सोचा कि मुझे आवाज मारेगा, तो भाई चल ले ले कोई बात नहीं। तो जोहरी आगे निकल गया, तो वो अपना बैल लेके अपना मस्ती में चलता रहा वो। तो रास्ते में उसको एक और व्यक्ति मिल गया, उसने पूछा कितने का देगा ये पत्थर। तो उसने भी सोचा यार 10 रुपए ज्यादा है। नहीं, तो उसने कहा चल भाई 5 रुपए दे दे। तो उसने 5 रुपए दिए, पत्थर लेके चलता बना वो। तो जोहरी ने देखा यार इसने आवाज नहीं मारी है अभी तक, तो वापस गया उसके पास, ढूंढा उसको। उसने कहा चल 10 रुपए ले यार दे दे चल। उसने कहा तो मैंने बेच दिया पत्थर। कितने का बेचा। 5 रुपए का बेच दिया। अरे बेवकूफ, हीरा था हीरा, तूने 5 रुपए का बेच दिया, कितना बड़ा बेवकूफ है। तो उस बैल वाले ने बोला कि मेरे से बड़े बेवकूफ तो आप हो, आप सहमत हो कि नहीं हो। दोनों बैल वाले और जोहरी में से बड़ा बेवकूफ कौन है। चोरी है ना, नहीं उसको तो पता ही नहीं है बैल वाले को, उसके लिए तो पत्थर है वो चमकीला पत्थर। लेकिन जिसको पता था, उसने वो 10 रुपए देकर भी 1000 रुपए का वो हीरा नहीं लिया, तो वो जोरी ज्यादा बेवकूफ हुआ ना। अगर आप लोग गंभीरता से नहीं लोगे हरे कृष्णा मंत्र को, तो आप भी जोहरी बन जाओगे। नहीं, सो आप जो हरे कृष्ण मंत्र है, जो भगवान की भक्ति है, वो करोड़ों हीरों से भी ज्यादा कीमती है। ब्रह्मांड का सारा धन एक तरफ रख दो और हरे कृष्ण एक बार बोल के दूसरे तराजू में रख दो, वो कुछ आपस में तुलना नहीं है, इतना कीमती है भगवान की भक्ति और हरे कृष्णा मंत्र, आपको मिल भी गया। अगर आपने उसको गंभीरता से नहीं लिया, अगर आपने उसका बताने के बाद भी आपने अगर महत्व नहीं समझा, तो झोरी की तरह जो झोरी का हाल हुआ वही हाल हमारा भी होगा, है ना। तो जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान की शरण ली और निरपेक्ष भाव से भगवान की सेवा के रूप में उसने युद्ध लड़ा, उसने उसी प्रकार आप भी भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु की शरण ले सकते हो, और जो आपका जीवन संघर्ष है बहुत ही आसानी से आप उसको पार कर सकते हो। कुछ आप देखना आपके जीवन में कितना सुख और शांति आ जाएगी। तो आप बोलो हमारे तो पहले से गुरु हैं। नहीं, हमने तो गुरु बनाए हुए हैं, तो हम उन गुरु को कैसे छोड़ें। तो हमने तो गुरु बनाए हुए, हमें आपकी जो प्रभुपाद हैं या उनके शिष्य, उनकी शरण लेने का हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कहा गुरु बनाना चाहिए, हमने बना रखे हैं, बात खत्म हो गई। तो क्या जो आपके गुरु हैं आपका हर कदम पे मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं एक व्यक्ति से मिला इधर कैंट है ना, जो सारा मिलिट्री एरिया है, तो मैं दिल्ली कैंट जो है, तो वहाँ पर मैं एक व्यक्ति से मिला, तो मैंने जो बात आपको बोली मैंने उसको भी बोली, कई साल पहले की बात है। सो ऐसे ही मुझे मिल गया रास्ते में वो, सो वो कहा, उसने कहा कि मेरे तो गुरु हैं। तो मैंने उससे पूछा लास्ट टाइम, तो वो उनकी उस समय उम्र थी करीब 60-65 साल की। तो मैंने कहा लास्ट टाइम तुम अपने गुरु से कब मिले थे? उसने कहा लास्ट टाइम मैं 32 साल पहले मिला था। तो मैंने कहा किस बात के गुरु हैं आप? गुरु से मिल नहीं रहे, गुरु से शिक्षा नहीं ले रहे, गुरु से ये नहीं जिज्ञासा नहीं कर रहे कि मुझे अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए। तो वो किस तरह का आपने गुरु धारण कर रखा है? गुरु को लॉकेट थोड़े ना है कि डाल लिया चलो अच्छा लग रहा हूँ ना। गुरु ऐसे नहीं है, गुरु कोई आपका कोई जेवर का हिस्सा नहीं है, है ना। गुरु कोई ऐसा नहीं है कि आपने मुकुट है तो लगा लिया आप सुंदर लग रहे हैं, या चेन डाल ली तो सुंदर लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। गुरु व्यक्ति है जो आपको डांटेंगे, आपको बोलेंगे कि आप बेवकूफ हो, आप ठीक से अपना जीवन नहीं बिता रहे हो, आपको आगे जाके मुश्किल होगी, अपना जीवन इस तरह से बदलो कि आप भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर पाओ। तो आप बोलोगे कैसे स्मरण कर पाऊं, मैं तो ऐसे मेरी सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या ऐसे चलती है। तो गुरु आपको बताएंगे देखो आप अपनी इसी दिनचर्या में इसको इस प्रकार बदलाव कर सकते हो कि आप अच्छे से भगवान का स्मरण कर पाओ। जब तक गुरु आपको ये चीज नहीं बता रहे, जब तक आप गुरु से ये चीज नहीं पूछ रहे, तब तक वो गुरु भी बेकार है और आप शिष्य भी बेकार हो, है ना। सो बहुत ही आवश्यक है कि आप एक प्रमाणिक गुरु की शरण लें, और गुरु उस गुरु की शरण लें जो कृष्ण एक शरणम, जो खुद भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, और आप लोगों को भी भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित कैसे होना है वो सिखाए। अगर कोई व्यक्ति आपको बोले जतो मत ततो पद, जैसे आपकी इच्छा वैसे करो, कौन सा मंत्र आपको अच्छा लगता है वो मंत्र देता हूँ, वो बेकार ढोंगी गुरु है, बकवास है, उसके पास जाओगे, अंधा यथांधे उपनियमाना, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चलेगा तो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे, किसी न किसी जगह दुर्घटना होगी उनके साथ में। उसी प्रकार अगर आप किसी ऐसे गुरु के पास नहीं जा रहे जिनके पास ज्ञान चक्षु है, जो शास्त्र चक्षु के द्वारा जिनको ज्ञान प्राप्त है और जिन्होंने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया है, अगर हम ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेना तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी हैं जिनको ज्ञान के बारे में, जिन्होंने वो ज्ञान को आत्मसात कर रखा है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्, वो आपको ज्ञान दे पाएंगे, है ना। आज मैं सुबह पार्क गया था जप करने के लिए, तो वहां पे एक व्यक्ति शिविर लगा के बैठा हुआ था, बच्चों के साथ होता ही है ऐसा, एक व्यक्ति शिविर लगा के बैठा हुआ था और लोगों को बोल रहा था, देखो बाहर की यात्रा बंद करो, भीतर की यात्रा शुरू करो। अबे जाना कहाँ है ये भी तो बता, यात्रा शुरू कर भी ली, जाना कहाँ है ये नहीं बताएगा किसी को, यात्रा शुरू करके किस पूर्व में जाएं, पश्चिम में जाएं, कहाँ जाएं। हाँ, और उसने एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, एक लाइन बोलता था और टेप रिकॉर्डर में से ट्यून बजती थी उसके अंदर से। मैंने कहा ये तो लोगों को मंत्र मुक्त करके लूटने का इसका धंधा लग रहा है इसका। हाँ, बाहर की यात्रा भीतर की यात्रा बकवास बात है, सीधा बोलो भैया तू कौन है, तू शरीर है कि आत्मा है, पहले अपनी पहचान बताओ फिर बात करेंगे। अगर आप आत्मा हो तो फिर आत्मा का परमात्मा से संबंध है, वो संबंध जानो और परमात्मा की सेवा में रहो, बात खत्म हो गई। इसमें भीतर की यात्रा बाहर की यात्रा क्या बकवास लगा रखी है ना। भगवान कृष्ण कहीं भी नहीं कह रहे भगवत गीता में भीतर की यात्रा शुरू करो, क्या सुरंग में घुस जाए क्या, बिल्कुल बेकार बात है, लेकिन लोग सुन रहे हैं उसको। तो आप इसलिए भी भाग्यशाली हो कि आपको भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को यथारूप सुनने का अवसर मिलता है, हर कहीं पर ये खरी चीज उपलब्ध नहीं है, हर कोई नहीं बोल रहा, हर व्यक्ति ये सोचता है कि इसको कैसे मैं खुश कर दूं और इसका धन ले लूं। हमें आपका धन नहीं चाहिए, हमें आपका मन चाहिए। हाँ, और जब आप हमें अपना मन दे देंगे, हम आपका मन लेके क्या करेंगे, हम आपका मन लेके भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब आप ही अगर अपना मन को संभाल के बैठो और मन आपको दे दुनादन डंडे मार रहा है और आप खाए जा रहे हो, तो उसमें किसको नुकसान है, किसको नुकसान है, आपको नुकसान है नहीं। सो आप प्लीज इसको गंभीरता से लीजिए। आपके पास कोई बहुत 500 साल का 1000 साल का जीवन नहीं है, अगर होता भी वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को बोला कि देखो तुम अमरता का वरदान मांग रहे हो, ठीक है मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, लेकिन आपकी तो आयु बहुत बड़ी है, तो खत्म हो जाएगी ना, बड़ी ऐसे मतलब क्या है, करोड़ वर्ष की आयु है लेकिन खत्म हो जाएगी, तो उसका क्या फायदा है। मान लिया मैंने 311 करोड़ वर्ष तक जीना है, लेकिन फायदा क्या, 311 करोड़ वर्ष के बाद मुझे मरना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या है ऐसी आयु का। कोई एक मच्छर 24 घंटे में मर रहा है, ब्रह्मा जी 311 करोड़ वर्ष में मर रहे हैं, बात एक ही है। ब्रह्मादि कीट पद का वधे अस्य जीवा, ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे हैं कि मुझमें और एक कीड़े में कुछ भी फर्क नहीं है, वो कीड़ा भी पैदा हो रहा है और मर रहा है, और मैं भी पैदा हो रहा हूँ और मर रहा हूँ। जब ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, तो आपकी 50-60-70 साल की उम्र को इतना ज़्यादा ये सोचना कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आपको ये शरीर या परिवार छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि ये शरीर छोड़कर आप एक कमरे के मकान से महल में जाना चाहते हो या एक कमरे के मकान से फुटपाथ पे आना चाहते हो। आप ये शरीर छोड़ के अगर आप भक्ति में जुड़ते हो तो ये शरीर छोड़ोगे तो भगवत धाम जाओगे, भगवान के महल में रहोगे। और अगर आप भक्ति नहीं करते तो शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होगा। आप इसकी एक झलक आप प्राप्त कर सकते हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में अनेक यातनाओं का वर्णन दिया गया है। जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ते उनके साथ यमदूत क्या क्या सलूक करते हैं, आप उसको पढ़ोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो आप अपने आप को यमदूतों का सामना करने के लिए तैयार मत करो। आप अपने आप को तैयार करो कि आपको लेने के लिए विष्णु दूत आए, पुष्पक विमान लेकर आए और आपको बहुत ही आदर सहित उसमें बिठाएं और भगवान के धाम लेके जाएं। पलक झपकते आप एक पलक झपकोगे तो आप सीधा भगवत धाम में आपकी पलक खुलेगी, और चारों तरफ सुखी सुख होगा। ये आप सब प्राप्त कर सकते हो भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का गंभीरता से जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे,